ओम शांति। यथार्थ याद द्वारा डबल लाइट स्थिति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल से 1 जनवरी शुरू हुई, परसों बाबा के साथ हमने नया साल मनाया और जनवरी मास हम सबके लिए तपस्या का मास है। ब्रह्मा बाबा साकार से अव्यक्त हुए, फरिश्ता बने। तो आपने जैसा पहले दिन कल सुना था सुबह सुबह मुरली में कि हमें ये जनवरी मास कैसे मनाना है, डबल लाइट स्थिति। पहले 16 दिन डबल लाइट स्थिति और फिर अगले नेक्स्ट 15 दिन संपन्न और संपूर्ण स्थिति का अभ्यास करना है। जैसे समय भी हमें बता रहा है, समय की निशानी आज बाबा ने मुरली में भी कही, जैसे ही आप कर्मातीत होंगे तो कौन सी लड़ाई शुरू हो जाएगी, याद है सभी को? जैसे ही हम कर्मातीत बनेंगे तो एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो आखिरी लड़ाई होगी, है ना। तो जो डबल लाइट स्थिति हमारी बने, कैसे बने, और डबल लाइट स्थिति क्या होती है, और यथार्थ याद क्या होती है, आज इसी बात पर हम गहराई से चिंतन करेंगे। इसको एकदम इतना सिंपल तरह से हम बना लेंगे, एकदम मैथमेटिक्स जैसा बना देंगे कि कैसे हम यथार्थ याद द्वारा डबल लाइट स्थिति। जब हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो हमें योग के बहुत गहरे अनुभव हो सकते हैं, और प्रैक्टिकल जब हमारा कनेक्शन हो जाता है तो लाइट आने लगती है। तो हम बहुत ही आराम से अगले 45 मिनट या लगभग 1 घंटे के आसपास हम इस बात को बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी एकदम एकांत में होकर के बैठें, मन बुद्धि को एकदम एकाग्र कर लें और सीधे होकर बैठ जाएं। अगर आपका किसी का भी मोबाइल स्विच ऑन मोड में है तो उसको स्विच ऑफ कर दें या साइलेंस में डाल दें, ताकि मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो ही आप इस बात को गहराई से समझ पाएंगे। क्योंकि खाली सुनना नहीं है, समझना भी है और फिर करना भी है। इस अगले जो 15 दिन हमें जो पुरुषार्थ करना है उसके ऊपर हमारी कैसी हमारी तपस्या हो, कैसी हमारी याद हो, उसी पर ये क्लास रहेगी। चलिए हम 1 मिनट फिर दोबारा साइलेंस में बैठ जाते हैं और फिर हम क्लास शुरू करेंगे। इस बीच में अपने मोबाइल आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। 1 मिनट सभी मन बुद्धि से एकाग्र हो जाएं, बस अंदर यही अनुभव रहे, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो दोनों ऑब्जेक्टों के मध्य, मुझे आत्मा से 7 आत्मिक एनर्जी ऊर्जाएं निकल रही हैं और सारे शरीर के एक सेल्स में फैलती जा रही हैं, और परमात्मा पिता जो ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में है उनसे एनर्जी मुझ में आ रही है, 7 एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, और उसको अनुभव करें। इसी संकल्प में 1 मिनट के लिए बैठ जाएं। ओम शांति। डबल लाइट का अर्थ क्या है? डबल लाइट माना, बाबा की मुरली में आपने बार बार सुना होगा, डबल लाइट माना एक तो आत्मा लाइट, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, लाइट है तो आत्मा लाइट, और दूसरा जो भी अपने बोझ और बंधन है, जो भी आत्मा पर जितने भी बोझ और बंधन है वो बाप को दे दें तो क्या हो जाएंगे, हम लाइट हो गए ना, हल्के हो गए ना। तो एक लाइट माना ज्योति, दूसरा लाइट माना हल्का लाइट। तो डबल लाइट का अर्थ यह है कि एक तो हम हमेशा इस अनुभूति में रहें, एक स्मृति स्वरूप बन जाए। एक तो होता है स्मृति में लाना, हम बार बार संकल्प करते हैं, नहीं मैं देह नहीं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, दोनों भ्रुक्टों के मध्य दोनों ब्रेन राइट और लेफ्ट ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम कौन सा है, इसके बीच में है हाइपोथैलेमस और उसके मध्य में मैं स्थित हूं और यहां पर मैं बैठ करके मुझ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा से सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं निकल रही हैं जो लगभग दिमाग की, हमारे मस्तिष्क की, हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन कोशिकाएं हैं, 100 बिलियन नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं इंग्लिश में, या ब्रेन की कोशिकाएं कह सकते हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं कह सकते हैं। तो 100 बिलियन कोशिकाएं साथ साथ पांचों कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, पूरी स्किन, बाहर भी हमारे स्किन है, बॉडी पर स्किन है पूरी, जहां भी देखो कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहां पे स्किन ना हो, जहां पे त्वचा ना हो। फिर मुंह के अंदर भी स्किन है, नाक के अंदर भी स्किन है, सांस की नाली, पूरी सांस की नाली में, और फिर फेफड़े में, पूरे के पूरे फेफड़े में, जहां पर ऑक्सीजन, हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो वो भी पूरी स्किन है अंदर, है ना। ऐसी खाने की नाली, ये जो खाने की नाली है, फिर हमारा स्टमक है, पेट जिसे कहते हैं, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, लगभग 24 फुट लंबी आंत है, उसमें भी अंदर की स्किन है, वो अंदर की स्किन है। ऐसे ही हमारी जो यूरिन किडनी है, किडनी की नाली जो होती है जहां पर हमारा यूरिन खून छनता है और यूरिन बन जाता है, सारी की सारी गंदगी उसमें बाहर निकल जाती है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और हमारी जो आर्टरीज और वेन्स हैं, हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर की लाइनिंग और फिर आर्टरीज जिनमें खून बहता है, जिनमें साफ खून बहता है, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब की सब खून की नाली, मतलब खून की जितनी नालियां हैं हमारे शरीर में, उनके अंदर भी एक स्किन है। तो अंदर बाहर की सारी स्किन और साथ साथ हमारा जो बॉडी शरीर है, ये 80,000 बिलियन कोशिकाओं का बना हुआ है। 1 बिलियन माना 100 करोड़, तो 80,000 को अगर आप 100 से गुना करें तो इतना, मतलब इतने करोड़ सेल्स से बना हुआ है, 80,000 बिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है, इतनी हमारी सेल। इन सबको कौन पोषित कर रहा है? मैं आत्मा यहां बैठ करके सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान, पवित्रता, शांति, रूहानी प्यार, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, खाली सुख नहीं, अतिंद्रिय सुख, रूहानी प्यार, खाली प्यार नहीं, रूहानी प्यार, राइट, अतिंद्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियां। ये सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं जिससे ये शरीर हमारा चल रहा है। और उसे पोषण करने वाला कौन है? मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। तो ये पहली जो बात है, हमें ये ध्यान, चलते फिरते उठते बैठते अगर हमें ध्यान रखें तो हम लाइट हैं। दूसरी बात, जो भी मुझ आत्मा के पर बोझ और बंधन है, जो कल आपने सुना डबल लाइट स्थिति के अनुभव में जो बात सुनी आपने कि मैं डबल लाइट आत्मा, अपने जो भी बोझ और बंधन है बाप के हवाले करके मैं हल्की हो जाऊं, डबल लाइट हो जाती हूं, तो अपने जो भी बोझ और बंधन है बाप को हवाले कर दो, तो ये है डबल लाइट स्थिति, राइट। कौन कौन से बोझ और बंधन है आत्मा के ऊपर? सबसे पहले तो शरीर का बोझ है ना, मुझ आत्मा को इस शरीर का बंधन है कि नहीं बंधन है? मैं आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद हूं, है ना, राइट। ये मुझे इसको पोषित करना ही है, मुझे इसको चलाना ही है, समय से पहले मैं शरीर को छोड़ नहीं सकता हूं। छोड़ सकते हैं आप सभी? कोई अपनी मर्जी से? कोई छोड़ नहीं सकते हैं, तो मुझे इस शरीर को पोषित करना ही है। तो ये जो हमारी जो, तो पहला बंधन किस चीज का है? ये पुरानी देह, ये बंधन है। दूसरा है पुराने जो संबंध है, हमारे देह के संबंध है, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, दोस्त हैं, बच्चे हैं, है ना। तो ये भी एक देह के बंधन है, संबंध और संपर्क, देह के संबंध और संपर्क। फिर देह का स्वभाव है, देह का स्वभाव कौन सा है? ये पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये देह की नेचर है। अपने आप को देह देखते ही या दूसरे को देह देखेंगे जब भी, तो अपने आप काम विकार पैदा हो जाता है, क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, मोह और अहंकार पैदा होता है। क्योंकि देह बाई नेचर, अपने आप को देह समझते ही हमारे इनसिक्योरिटी पैदा होती है, असुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो उसको देखते ही हमें ये पांच चीज हमारे अंदर ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। तो ये देह की नेचर है, स्वभाव है। और देह का संस्कार क्या है? देह का संस्कार है आलस्य। जैसा संस्कार माने आदत, अपने आप को देह समझते ही क्या होगा हमारे अंदर? आलस आएगा। चलो ना सो जाते हैं थोड़ी देर, क्लास में क्या करेंगे, बैठ के धूप में बैठ ले, थोड़ी धूप में बैठ जाते हैं, है ना, सुस्ता लेते हैं थोड़ी देर, है ना। अमृत वेला आज ठंडी बहुत ज्यादा, आज 6 बजे कर लेंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे नहीं सोते, 4 बजे उठते नहीं है ना, तो आलस आता है, राइट। दूसरा जो है अलबेलापन, केयरलेसनेस, ये भी देह की आदत है। अपना दोष दिखाई नहीं देता, जब बॉडी कॉन्शियस हम हो जाते हैं तो हमें अपना दोष नजर नहीं आता है, दूसरों में जो भी गलती मेरी हो मुझे दूसरों में नजर आती है। अपनी हर दोष के लिए, हर कमजोरी के लिए मैं किसके जिम्मेवार ठहराता हूं? दूसरों को जिम्मेवार ठहराता हूं। यह देह की आदत है। जैसे देहवान में आप आएंगे, आप कभी अपने आप को दोषी नहीं देखेंगे, मैंने मेरे से गलती क्यों हुई, क्योंकि इसने गलती की, पहले इसने ऐसा किया फिर मैंने ऐसा किया। तो दूसरों में दोष देखना, दूसरों में दोष निकालना, यह देह की आदत है। फिर देहवान से और क्या होता है, किसी ने थोड़ा सा मेरे प्रति कुछ कर दिया गलत, तो उसको हम भूलते नहीं है, उसके लिए प्रति रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेने की भावना रखते हैं। शक करना देह की आदत है, देहभान की आदत है। अनुमान लगाना उसने ऐसा कर दिया होगा, यह देहभान की आदत है। फिर चिंता करना देहभान की आदत है। जैसे देहभान आएगा, बॉडी कॉन्शियसनेस आएगी, ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या होगी? चिंता पैदा होगी। और भय लगना, डर लगना, यह भी देहभान की आदत है। फिर प्रेशर महसूस करना, मतलब जल्दीबाजी महसूस करना, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, ये काम मैंने कहा इस ढंग से ही होना चाहिए था, इस ढंग से क्यों नहीं हुआ, ये भी देहभान की आदत है। और ईर्ष्या द्वेष करना देहभान की आदत है। कंपैरिजन कंपटीशन करना देहभान की आदत है। तो ये देहभान की स्वभाव और संस्कार, ये भी आत्मा पे बोझ है, बंधन है। और फिर देह के पदार्थ, आपने मकान बनाया, आपने कार खरीदी, आप जो कुछ भी लेते हैं, अपने कपड़े हैं, आपके घर में कुछ भी ले खरीद करके लाते हैं, कुछ भी अपनी चीजें मन में, जो भी आपके घर में सामान है या जो भी पर्सनल या घर में चीजें, उन सबकी संभाल करनी पड़ती है, वो भी बंधन है, वो भी बोझ है। तो ये सारे सारे हमारी हम आत्मा पे बंधन है, बोझ है। ये लगता है मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, मुझे ही तो करना पड़ेगा, ये देह की संभाल करनी पड़ेगी, देह के संबंध, मां बाप की केयर करनी, पति पत्नी की केयर करनी, बच्चों की केयर करनी, जो आदत पड़ गई है, जो स्वभाव बन गया है गुस्सा करने का, गुस्सा करने का, या लोभ की आदत है, मोह की आदत है, अहंकार की आदत है, स्वभाव बन गया है ना, और आदतें मैंने बताई, जो 10 आदतें बताई, ये सब एक तरह के आत्मा पे बंधन पड़ गए, बोझ पड़ गए। जब सारे के सारे बोझ हम बाप को दे दें, ये देह नहीं, मैं देह को चलाने के निमित्त हूं, आप निमित्त का मतलब समझते हैं? निमित्त का क्या मतलब है? कई बार हम ये मतलब लेते हैं, निमित्त का मतलब बाबा मुरली में कहता निमित्त, निमित्त का मतलब हम ये लेते हैं कि मैं इंचार्ज हूं, इस बात का निमित्त हूं, इस सेवा का निमित्त हूं, मतलब मेरी सब बातें सुने, जैसे मैं कहूं इसको सब माने। निमित्त का मतलब ये नहीं है। निमित्त का अर्थ क्या है? जैसे बाबा मुझे चलाना चाहता है, बाबा की श्रीमत पे मैं चलने के निमित्त हूं, चाहे मुझे कोई भी सेवा मिली है, मैं बाबा की श्रीमत पर चलने के, बाबा की जो डायरेक्शन मेरे लिए है, जैसे मुझे प्रोफेशन डॉक्टर का मिला, या आपको कोई भी प्रोफेशन मिला, आप घर में पिता हैं, पति है या पत्नी है या मां है, आपका जो भी जिस चीज के भी आप निमित हैं, जिस चीज की आपकी जिम्मेवारी है, तो उसके लिए आपको बाबा ने डायरेक्शन दी हुई है, बच्चे कैसे आपको कार्य करना है। तो उस डायरेक्शन पे चल करके मैं दूसरों को फिर बाप की डायरेक्शन पे चलाने के निमित्त हूं, इसे कहते निमित्त। निमित्त का मतलब इंचार्ज नहीं है, राइट। कई बार ये भी बोलते हैं मैं निमित्त हूं ना इसकी, सबको मेरी माननी पड़ेगी, आप मेरे नीचे सेवा करते हो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं, मैं बाबा की श्रीमत पे चलूं और दूसरों को बाबा की श्रीमत पे चलाऊं, जो भी इनके जो मेरे साथ हैं। और कैसे, बोल करके नहीं सिखाऊं, कैसे सिखाऊं, चल करके बाबा की डायरेक्शन को अमल में ला करके उनको मैं ऐसी प्रेरणा दूं ताकि वो भी चलें। ये है निमित्त का भाव, राइट। तो ये जब हम अपने सारे बोझ बाबा को दे देते हैं तो फिर हम कहेंगे हम डबल लाइट स्थिति है। तो आज हम देखेंगे गहराई से कि आज ये डबल लाइट स्थिति हमारी कैसे बने। अगले 15 दिन हमको ये पुरुषार्थ करना है कैसे हमारी डबल लाइट स्थिति बने, और उसका एक ही साधन है यथार्थ याद। याद तो हम सभी करते हैं, सबसे मुख्य सब्जेक्ट हमारा याद ही है, किंतु याद की विधि ठीक नहीं है। हम 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से हम बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, अमृत वेला करते हैं, मुरली करते हैं, दिन में अटेंशन भी रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आता, फिर भी आज भी हम बोझ महसूस क्यों करते हैं, क्यों हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। जब भी योग करने बैठते हैं, जैसे एक बच्चा पहली क्लास में तो अच्छा लगता है या नर्सरी क्लास में अच्छा लगता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट करता हुआ, नहीं अच्छा लगता है ना। और वही अगर बी कॉम में आकर के, एम कॉम में आके या एमबीबीएस में आने के बाद फिर क्लास किताब पढ़ने से पहले बोले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ऐसे करते हैं हम लोग बड़ी क्लासेस में जाने के बाद, सीधा चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं कि पहले ए फॉर एप्पल से शुरू करते हैं। क्योंकि यहां पर देखें तो अगर 50 साल का भी कोई अगर बीके है तो जब बैठता है तो क्या शुरू करता है, मैं स्थूल देह नहीं, मैं स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अभी तक याद नहीं हुआ, 50 साल से करते करते याद नहीं हुआ कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, नहीं हुआ। ऐसे करते नहीं करते सभी, बार बार यही याद करने की कोशिश करते हैं, मैं स्थूल देह नहीं हूं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, अभी तक याद नहीं हुआ, अनुभव नहीं किया है ये कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। क्यों नहीं अभी 50 साल में भी हमको अनुभव क्यों नहीं हुआ अभी तक, चलते फिरते ही हमारी स्थिति क्यों नहीं बनी है, कभी आप सोचते हैं बैठ करके? ये आपने प्लग लगा दिया, बटन भी ऑन कर दिया, करंट करंट क्यों नहीं आ रही है, डबल लाइट स्थिति क्यों नहीं बन रही है, ये फील क्यों नहीं हो रहा, चलते फिरते फील क्यों नहीं हो रहा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा यहां चमक रही हूं, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, ऐसा क्यों नहीं फील होता है, क्या कारण है बताओ? देहवान, तो हम तो बार बार ये बोल रहे हैं मैं देहवान से रहित हूं, है ना, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो फिर क्यों ऐसा फील हो रहा है, ऐसा क्यों फील हो रहा है? कभी देखा आपने एक 15-20 साल के आदमी को, 20 साल के लड़के को देखा कभी, वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट कर रहा हो? हम अभी भी यही करते थे, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, नहीं ऐसे करते बार बार, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, टीचर भी ऐसे ही करती है ना, नहीं करते टीचर ऐसा नहीं करते, कैसे करते हैं, बस बैठे और उड़ गए, चलते फिरते उड़ते रहते हैं, हाँ? नहीं करते हैं ना, क्योंकि टीचर्स तो बड़ी बड़ी टीचर्स भी आते हैं ना हमारे, हम कनेक्शन में आते हैं, हमारे पास आते हैं, कभी दिखाने भी आते हैं, कभी तो हम बात करते हैं, तो कहते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, अभी भी मेहनत करनी पड़ती है ना, दूसरों को सिखाते हैं पर खुद भी अपनी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसा क्यों है? इसी बात की हम गहराई में चलते हैं, ऐसा क्यों है और कैसा हम क्या करें कि हमारी चलते फिरते वो स्थिति बन जाए जो बाबा हमसे कहता है। देखो अभी संडे को अभी बाबा जब आए थे, आपने अनुभव किया होगा बाबा क्या कह रहे थे। ये बाबा के साथ का मिलन, बाप का मिलन ड्रामा में, जो बाप का मिलन कितना प्यारा है, साकार में मिलन कितना प्यारा है, आत्मा और परमात्मा का मिलन कितना प्यारा है। तो ये अनुभव कर रहे थे आप ये प्यार उस दिन। ये प्यार वही अनुभव कर सकता है जिसने रियल में अभ्यास किया होगा। जो बाबा कह रहे थे कि बच्चे बच्चे बाप को देख रहे हैं, बाप बच्चों को देख रहे हैं, बाप बहुत खुश हो रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं, बच्चों के मस्तक चमक रहे हैं, बच्चों के मस्तक से लाइट निकल रही है, हर एक के बच्चे के दिल से निकल रहा है मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा निकल रहा है। तो वो अनुभूति किस किस को हो रही थी। हाथ उठाने की बात नहीं, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूं कि अपने अंदर से आप देखो कि जो बाबा कह रहा था वो अनुभूति हो रही थी। वो मुरली कितने आप में से कितने लोगों ने वो मुरली दोबारा पढ़ी, बाबा की मुरली सुनने के बाद कितने लोगों ने पढ़ी, हाथ उठाओ जरा देखें किसने पढ़ी। बहुत थोड़े लोगों ने पढ़ी है ना, मुरली ले सबने लिया है ना, पर रख दिया है कि घर जाके पढ़ेंगे है ना, नहीं ऐसा घर में जाने के बाद पढ़ लेंगे। आप वो मुरली पढ़ के देखो, सुनने का अलग मजा था, पढ़ के देखो, वो पढ़ के देखो तो कितना और वाह विभोर, मतलब आप कितने खो जाएंगे सुनने से भी ज्यादा। अब पढ़ेंगे तो बहुत 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 आनंद आएगा, वो प्रैक्टिकल फीलिंग आएगी कि हाँ बाबा ने कहा वो सीन आप आंखों के सामने बार बार इमर्ज करो तो आपको फिर अनुभूति होने लगेगी वही वाली। अगर उस समय नहीं होगी तो आप मुरली पढ़ते समय अनुभूति होगी। तो आज हम चलते हैं ऐसी गहराई में कि यथार्थ याद क्या है, प्रैक्टिकल याद क्या है, जिससे कि हमारी स्थिति डबल लाइट हो जाए। क्यों हमें अनुभूति नहीं होती, जो बात मैंने अभी आपसे की, हमें आज भी 50 साल के बाद भी, 60 साल के बाद भी, 40 साल के बाद, 25-30 साल के बाद भी, रोज मुरली सुनते हुए वही मुरलियां पांच पांच बार रिपीट हो गई, छह छह बार रिपीट हमारे सामने हो गई, आज भी वो मुरली हमको नई लगती है, आज भी वो मुरली सुन के लगता है कि हम इसके लायक अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। क्यों नहीं पहुंचे हैं, उसकी गहराई में चलते हैं। सबसे पहली बात आप सबको याद होगा, हम सभी रिटर्न जर्नी पर हैं। बाबा ने मुरली में बार बार कई बार कहा है कि हम रिटर्न जर्नी पर हैं। 83वां जन्म, इस जन्म में जब हम आए थे, हमारे 83 जन्म हुए थे, और जब से हम बाबा के बने हमारा 84वां जन्म शुरू हो गया। ये हमारा दिव्य जन्म है, दिव्य अलौकिक जन्म है, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख द्वारा किसी भी बहन के थ्रू या भाई के थ्रू हमें ज्ञान दिलवाया और उसको अपने जीवन में अडॉप्ट करें, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने। जिस दिन से हम ब्रह्मा कुमारी बने हमारा 84वां जन्म शुरू हो गया। और जिस दिन से हमारा 84वां जन्म शुरू हुआ उसके पहले हमारे एक विक्रम का हिसाब एक रुपया था, मतलब एक पाप किया एक हिसाब किताब था। और जिस दिन से हमने बाबा का ज्ञान समझा, 7 दिन का कोर्स शुरू किया, कोर्स पूरा कर लिया, उस दिन से हमारा हिसाब 100 गुना का हो गया, हम बड़े बिजनेसमैन बन गए। हम कैसे बड़े बिजनेसमैन बन गए, पहले एक रुपया अगर हम इन्वेस्ट करते थे तो एक रुपया हमारी इनकम हो जाती थी। अभी हमारी एक रुपया हम इनकम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपया हमारी इनकम होती है, ठीक बाबा की श्रीमत पे इन्वेस्ट करते हैं तो। और अभी हम एक रुपया गलत तरह से इन्वेस्ट करते हैं, श्रीमत के खिलाफ, रुपए की बात नहीं, मैं आपको हर मतलब रुपया की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे श्रीमत की बात कर रहा हूं, बाबा की श्रीमत पर कुछ भी कदम उठाते हैं, एक सेकंड भी, एक संकल्प भी, एक बोल भी, एक कर्म भी, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, ये सब कर्म है, हाथ तरफ से कोई कर्म करना, तो ये सारे कर्म है। अगर हम बाबा की श्रीमत पे करते हैं तो हमें एक का 100 गुना मिलता है। और कुछ भी हम बाबा की श्रीमत के खिलाफ देखते हैं, बाबा की श्रीमत के खिलाफ पढ़ते हैं, बाबा की श्रीमत के खिलाफ सुनते हैं, बाबा की श्रीमत के खिलाफ बोलते हैं, बाबा की श्रीमत के खिलाफ जो बाबा ने डायरेक्शन नहीं दिए वो खाते हैं, किसी अपने हाथ पैरों को कैसे बाबा की श्रीमत के खिलाफ यूज करते हैं, तो उसका एक का सौ गुना विकर्म बन जाता है, पाप कर्म बन जाता है। जब से हम बाबा के बने, राइट, इससे पहले जो 63 जन्म थे, 62 जन्म थे, वो हमने देवहान के वश में आकर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश आके, और इनके अंश और वंश जो 10 बातें मैंने बताई ना, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालना, बदला लेने की भावना रखना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता, भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष, ये 10 बातें जो बताई मैंने, ये इनके वश में होकर जो भी हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, बोला है, खाया है, और नाक को यूज किया है, हाथ पैरों को, बॉडी को यूज किया है, इसके वश में होकर किया है, वो सारे पाप कर्म बने हुए हैं। और रिटर्न जर्नी पर हमें, अब रिटर्न जर्नी का अर्थ क्या है, हर जन्म में हमारे तीन पार्ट होते हैं, एक बचपन होता है, एक जवानी होती है, एक बुढ़ापा होता है। बचपन और बुढ़ापे में हम कम पाप कर्म करते हैं, बचपन में हमें समझ नहीं होती है, विकारों की समझ नहीं होती, नाकाम क्रोध लोभ मोह अहंकार की समझ नहीं होती, और बुढ़ापे में हमारी कर्मेंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती, कमजोर हो जाती हैं, हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं, राइट, हमारी कुछ, हमें मतलब अपने आप ही दिखता ठीक से नहीं है, सुनता ठीक से नहीं है, नहीं, बोल ठीक से दे सकते नहीं, दांत निकल जाते हैं, नाक में कुछ पता नहीं लगता, नहीं ऐसा होता है, याद कुछ रहता नहीं है ना, तो अपने आप ही हमारी वैसे इच्छाएं भी कुछ रहती नहीं है, कोई इच्छा रखो तो भी पूरी होती नहीं है, तो हमसे पाप कर्म होने कम हो जाते हैं। तो बचपन और बुढ़ापे में हम कम पाप कर्म करते हैं, और जवानी में ज्यादा पाप कर्म करते हैं, सब विकार जवानी में ज्यादा रहते हैं, 15 साल से लेकर के 55 साल की उम्र तक ज्यादा रहते हैं, 55 से 60 तक कह सकते हो रहते हैं, उसके बाद कम होते जाते हैं। तो जब मैं जैसे अब अगर मैं बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा के चार नियम और चार मर्यादाएं हैं, बाबा ने हमें चार नियम दिए हैं ब्राह्मणों को और चार मर्यादाएं दी हैं। तो ब्राह्मण जो, जब हम मनुष्य से ब्राह्मण बने, पहले बाबा ने हमें क्या बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया। शूद्र माना जो पांचों विकारों के वश में हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में हो, जिसकी इसका ध्यान हमेशा देह पर रहे, देह में ही खोया रहे, देह और देह के संबंधों में खोया रहे। मनुष्य माना मन के वश में, मनुष्य आज की मूल्य में था ना, देवता भक्ति नहीं करते हैं किंतु मनुष्य देवताओं की भक्ति करते हैं। जब देवता मनुष्य बनते हैं तो वो देवताओं की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो मनुष्य का मतलब ही क्या है, जब देवता मनुष्य बने, माना देवता स्वराज्य अधिकारी थे, स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य था। जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ, जैसे ही देवता वाम मार्ग में गिरे, मतलब काम विकार में गए, वैसे ही आत्मा की शक्ति कम हो गई, आत्मा की बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज हो गई, 50% से कम ज्यादा डिस्चार्ज हो गई, और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने से, 50% से कम होने से मन की शक्ति बढ़ गई। नेक्स्ट जो था मंत्री, मन था, तो मन की एनर्जी ज्यादा हो गई और आत्मा मन के वश में हो गई। तो मन उष्य, मन 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 उष्य मन मन के वश में, तो मन राजा बन गया, आत्मा उसके वश में हो गई, और आत्मा का कनेक्शन किससे था, पांचों कर्मेंद्रियों से था, आंख से था, नाक से था, कान से था, मुख से था, त्वचा से था, इन पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आई वो हमारे दिल में जानी शुरू हो गई, राइट। पहले आत्मा से जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा हमें दिखाई देता था, अंदर आत्मा में इंफॉर्मेशन थी, मैं आत्मा हूं, सामने वाले भी आत्मा है, तो मैं अपने को आत्मा अनुभव करता था और दूसरों को भी आत्मा देखता था। अभी इंफॉर्मेशन क्या जा रही है आंखों के द्वारा, मैं पुरुष हूं, सामने वाली स्त्री है, मैं ऐसा हूं, मैं गोरा हूं, ये सामने वाला काला है, मैं सुंदर हूं, ये कम सुंदर है, कंपैरिजन आने लगा, उसके देवभान को देख करके मुझे अपना देवभान जागृत होने लगा, राइट, आंखों से ही देखा ना, सुना, महिमा सुनी या बुराई सुनी, मुख के द्वारा जो खाया उसका टेस्ट मन में समा गया, राइट, वो दिल में चला गया, वो हमारी कॉन्शियसनेस में चला गया। तो अब जो है इंफॉर्मेशन, बाहर की इंफॉर्मेशन दिल में जाने लगी। पहले अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर आती थी, हम जो अंदर इंफॉर्मेशन थी वो बाहर देखते थे। अभी क्योंकि मन जो दिखा रहा है, बाहर वाला सीन दिखा रहा है, पहले हम अंतर्मुखी थे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में हम बाह्य मुखी बन गए, पांचों तत्वों को देखने लगे, पांचों तत्वों से बनी हुई देह को देखने लगे, तो फिर वो हमारे दिल में चली गई। अगर आप इसकी गहराई में जाएं, आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन एक आत्मा, एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इन आंखों से देख नहीं सकते। दोनों भ्रुक्तियों के मध्य यहां पर दोनों ब्रेन है, यहां पर राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, और इसके बीच में हाइपोथैलेमस है। दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है और वो कंट्रोल रूम में आत्मा का निवास स्थान है। और आत्मा एनर्जी है, आत्मा ऊर्जा है, मैटर नहीं है, तत्व नहीं है। आत्मा, अगर हम एक हर मैटर, हर तत्व किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है, अणु से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और एटम में भी आगे न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आत्मा उनसे भी छोटी है। आप एटम को देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते हो ढंग से। और उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उनसे भी छोटा है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल को उसको बोसोन कहते हैं। तो वो हमारे संकल्प से भी हिल जाता है, उससे भी आत्मा अति सूक्ष्म है। और ऊर्जा है, ऊर्जा को हम देख नहीं सकते। तो कई भाई बहने बहुत कोशिश करते हैं योग में, कहते हैं हमारे सिर में दर्द हो जाता है, जब हम योग करने बैठते हैं सिर में दर्द हो जाता है, वैसे आंखें ऐसे करके बहुत तेज करके और फिर अंदर आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं। कई विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, मैं आत्मा, यहां सितारा चमक रहा हूं, मैं सितारा चमक रहा हूं, फिर लाइट हो गया, लाइट सारी जगह फैल रही है। आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा एक ऊर्जा है, एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है, चेतन एनर्जी है। तो आत्मा को बाबा कहते हैं, अब आप हम आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा को जान सकते हैं। जैसे एक बिजली के तार में, ये बिजली की तार है, इस बिजली की तार में बिजली बह रही ना, बिजली है ना इसके अंदर, हम इस बिजली को देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं। तार काटे तो दिखाई देगी, दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी ना। ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं, किंतु हम अनुभव कर सकते हैं। हम अनुभव की आंख से देख सकते हैं, क्या कि इससे इसमें ये लाइट आ रही है, इसलिए मैं आवाज मेरी मैग्नीफाई हो रही है, लाउड स्पीकर में लाउड हो रही है। अगर ये लाउड हो रही है, आपको सुनाई दे रही है, तो इसमें बिजली जा रही है, राइट। अगर ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें बिजली नहीं जा रही है। तो हम इसको अनुभव की आंख से देख सकते हैं, नहीं, बिजली दिखाई दे रही है इसके अंदर, अनुभव की आंख से दिखाई दे रही है, राइट। तो ऐसे ही हम आत्मा को अनुभव की आंख से जान सकते हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। तो कई बहुत इसमें बहुत ही अपने आप को डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब बहुत कोशिश करते रहते हैं आत्मा दिखाई दे दिखाई दे दिखाई, वो दिखाई देने की चीज नहीं है। ज्ञान, बाबा ने हमको ज्ञान दिया, बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, चलते फिरते उठते बैठते महसूस करो, ये देह अलग है, मैं अलग हूं, मैं इसको चलाने वाली शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, मैं यहां हूं। और उस चेतन पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी से ये सात चेतन एनर्जी निकल रही है, इसको चलते फिरते उठते बैठते महसूस करें। तो ये जो आत्मा से सात एनर्जी निकलती है, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कैसे क्या अभ्यास करते हैं। सपोज मैं, जैसे कभी आपने देखा है मुर्दा कभी शेव करता है क्या? डेड बॉडी कभी शेव करती है क्या? मुर्दा कभी ब्रश करता है क्या? मुर्दा कभी देखता है क्या? मैं कैसे अभ्यास करता हूं? सपोज मैं शेव कर रहा हूं, तो मैं क्या बात करता हूं अपने आप से? तो मैं बात करता हूं, अच्छा मैं आत्मा शेव कर रही हूं चेहरे पर, क्योंकि मुर्दा तो कभी शेव नहीं करता है। तो मैं आत्मा शेव कर रही हूं, मैं आत्मा ब्रश कर रही हूं, मैं आत्मा शीशे में देख रही हूं। अपने हर समय कॉन्शियस अपनी ट्रेनिंग माइंड को देनी है, अपने मन को कॉन्शियस ट्रेनिंग हर समय देनी है। बैठे हुए आप देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अगर आत्मा ना होती तो मैं देख सकता था, शरीर आंखें देख नहीं सकती थी। तो ये बार बार अभ्यास करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमने 63 जन्म यही अभ्यास किया है, मैं देह हूं। और देह अभिमान हमारा नेचुरल बन गया है, तो इसके कारण क्या होगी, तो ये जो आत्मा साथ एनर्जी निकल रही है, इसके आसपास इसमें जो हाइपोथैलेमस, इसमें जो सेल्स हैं, वो सेल्स इसको सेंस करती हैं, इस एनर्जी को, ज्ञान को सेंस करती हैं। ज्ञान बेसिकली क्या है, ABCD है। वैसे तो ज्ञान बहुत बड़ा है, सार रूप में ज्ञान में चार बातें ही हैं, जो कल की मुरली में आपने सुना। ज्ञान एक तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, और बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, और चौथी बात कह सकते हो हमारी आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। तो A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो बेसिकली योग क्या है या याद क्या है, योग कुछ और नहीं है, योग जो है वो है इसका अनुभव करना, इस ABCD को रियलाइज करना ही योग है। रियलाइज माना अनुभव करना। ज्ञान और योग में क्या फर्क है, मैं आत्मा हूं ये ज्ञान है, योग क्या है, मैं आत्मा हूं ये अनुभव करना योग है, राइट। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं ये ज्ञान है, योग क्या है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं ये अनुभव करना योग है। ठीक बात है या मुश्किल है योग? अच्छा, योग शब्द हमको यूज नहीं करना चाहिए, योग का उल्टा क्या होता है, योग का उल्टा क्या होता है, योग का उल्टा गयो है ना, गयो माना मैं आत्मा देहवान से गयो, मैं आत्मा देह को नरिश कर रही हूं, देह से अलग हूं, मैं आत्मा परमात्मा की याद में गयो, नहीं नहीं ऐसे, योग तो मुश्किल है ना, तो उल्टा कर दो, राम राम कहना मुश्किल है, मरा मरा कहना तो सहज है ना, तो मरा मरा को तो भी राम राम हो जाएगा नहीं, तो ये जो है ऐसे अनुभव कर लो। याद, अब याद कैसे करते हैं, देखो अभी तो ए फॉर, ये जो ए फॉर आत्मा, ये चलते फिरते अनुभव करते रहो, और अपने आप से बात करनी है, मैं आत्मा किसी और की संतान नहीं हूं, मैं परमात्मा की, परमात्मा जो परमात्मा क्या फर्क है, मुझ में क्या फर्क है, मैं भी बिंदु हूं वो भी बिंदु है, किंतु मैं स्वरूप हूं, वो सातों गुणों का सागर है। और सी फॉर कनेक्शन मतलब संबंध, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। सर्व संबंध में कौन कौन से संबंध है, मुख्य 9 संबंध है। एक तो मां का संबंध है, दूसरा पिता का संबंध है, तीसरा टीचर का संबंध है, चौथा सतगुरु का संबंध है, पांचवा बंधु, बंधु माना बड़ा भाई, हमारा बड़ा भाई है, राइट। छठा सखा, दोस्त है हमारा। सातवां हमारा साजन है। आठवां सर्जन है। और नौवां हमारा बच्चा है, राइट। हमें बच्चा चाहिए ना, एक वारिस तो चाहिए ना, ताकि हमारी, तो ये 9 संबंध की अनुभूति, वैसे तो बाप से हम कोई भी संबंध निभा सकते हैं, किंतु 9 संबंध की बहुत गहरी अनुभूति हमें बाप से चाहिए। एक्चुअली हम एक एक संबंध की गहराई में चले जाएं, तो हमें आप देखेंगे प्रैक्टिकली हम आधा आधा घंटा एक संबंध की अनुभूति में रह सकते हैं, तो 4.5 घंटा तो हमारा ऐसे बीत जाए एक एक सिर्फ संबंध की अनुभूति करते करते। एक एक संबंध की बहुत गहरी अनुभूति होती है। और डी फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें हम हर एक आत्मा एक्टर है और परमात्मा इसका डायरेक्टर है। हर आत्मा कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, इस जन्म के कर्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, वो भी इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हर आत्मा को डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है, जो कुछ भी हुआ अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ है, सारी प्रॉब्लम कहां पर है बताइए? हर आदमी के साथ सबसे सारी प्रॉब्लम कहां पर है? मेरे साथ अब तक जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने दुख दिया, उसने बचपन में ऐसा हुआ, जवानी में ऐसा हुआ, उसने मैं शादी हुई उसने ऐसा किया, उसने मेरा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ मुझे, उसने सास ने ऐसा बोला, पति ने ऐसा बोला, या पत्नी ने ऐसा बोला, या इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, ये सबकी कहानी है कि नहीं? सारे 90% विचार हमारे यहीं से आ रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। और बाबा ने हमें क्या सिखाया बच्चे? जो हुआ अच्छा हुआ है, किसने तुमको धोखा दिया? पिछले जन्म में तुमने उसको धोखा दिया था, इसलिए उसने इस जन्म में धोखा दिया। तुम्हारी पत्नी वो क्यों बनी है, तुम्हारा पति वही क्यों बना? क्योंकि तुमने पिछले जन्म में उससे कुछ लिया हुआ था, इसलिए तुम्हें उसके पति या पत्नी बनना पड़ा। पति पत्नी बने हैं इसलिए क्या कि हिसाब किताब चुकतू कर लें। किसी का कोई हमारे पास बेटा बना, हमारी बेटी बनी, क्यों बनी? वही हमारा बेटा बेटी क्यों बनी? क्योंकि उनसे हमारा पिछले जन्म का लेन देन है, हिसाब किताब है। उसी घर में हमने क्यों जन्म लिया? क्योंकि हमारा उनसे हिसाब किताब है। तो जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है? अच्छा हुआ बुरा हुआ है बताओ? कहीं ना कहीं हमारी ये प्रॉब्लम है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। और अच्छा हुआ तो नहीं है, कहते अच्छा हो भी नहीं रहा है, अभी भी बुरा हो रहा है। ये मेरे ही अपने कर्मों का हिसाब किताब है। तो अपने अंदर बहुत गहराई से अनुभव करना है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। अपने आप से बात करनी है। जब तक मेरे मन में ये बातें हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये, मेरी बात ही मत पूछो, मेरे बहुत कलेजे में बहुत घाव हुए हैं, मेरे दिल में बहुत घाव है, बात मत पूछो, है ना ऐसी ही बातें करते हैं ना आपस में, जब स्पेशली दो औरतें बैठती हैं ना, दो लेडीज बैठती हैं आपस में, है ना, तो यही बातें चलती हैं आपस में ना, या पति पत्नी बैठते तो भी ऐसे ही बोलते हैं, बच्चे भी आपस में बात करते हैं, आप पता आप या मेरी बात मत पूछ, बस मैं तो मेरे साथ क्या क्या हुआ आज तक, बहुत बहुत बातें हुई हैं। तो ये अपने अंदर से बाबा ने हमें सिखाया बच्चे, ये बार बार इस एबीसीडी को रियलाइज करो, यही याद है, यही योग है, यही मेडिटेशन है। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, मेरा बेटा भी आत्मा है, मेरी पत्नी भी आत्मा है, मेरा पति भी आत्मा है, मेरी सास भी आत्मा है, मेरा पिता भी आत्मा है, पत्नी जो मां भी आत्मा है, और पिछले जन्मों का हमारा हिसाब किताब इसलिए साथ में आए। और बाबा इसको डायरेक्ट कर रहा है कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी अच्छा क्यों हो रहा है? अभी बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी अभी डायरेक्शन मिल गई है, अंधेरा छट गया है, अंधेरे से रोशनी में आ गए, और जो होने वाला है अच्छे से अच्छा होने वाला है। तो जितना हम इस एबीसीडी को रिवाइज करेंगे और रियलाइज करेंगे, उतना हमारे अंदर मन में पवित्रता आती जाती है, उतना हमारा मन शुद्ध होता जाता है, और मन शुद्ध होता है तो शांति आ जाती है। तो एबीसीडी से पवित्रता आती है, मतलब ज्ञान से पवित्रता। ये मुरली ही ज्ञान है। ये मुरली क्या है बेसिकली, आप देखना, ध्यान से देखना, मुरली पढ़ के देखो तो मुरली में चार ही बातें होती हैं, ए बी सी डी, नहीं होती? नहीं होती है बच्चे? अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, आत्ममानी होके बैठे हो, देही मानी भाव, अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद कर रहे हो, तीन तीन तीनों संबंध से याद करते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हो, तो यही तो मुरली है, नहीं? यही चार बातें मुरली में होती हैं। पर अलग तरह से बाबा उसी को रमणीक बना करके डिफरेंट लहरों से, डिफरेंट एंगल से वो बातें समझाता है, चार बातें। तो एबीसीडी को जितना हम ज्यादा गहराई से रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे, हमारी मन और बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। और मन और बुद्धि शुद्ध होगी, शुद्ध का क्या मतलब है? मेरे अंदर से नेगेटिव विचार, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, उसने मेरे को ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये अशुद्धि है, ये नेगेटिव है। उसने मेरी बेइज्जती कर दी, ग्लानी कर दी, है ना, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, ये इच्छा रखना, कहीं ना कहीं लगाव, किसी से लगाव, किसी के प्रति झुकाव, किसी से किसी के प्रभाव में रहते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, है ना, तो ये प्रभाव में रहते हैं, किसी हम बीकेस के प्रभाव में भी रहते हैं, हमसे अपनों से बड़ों के प्रभाव में भी रहते हैं, शिव बाबा के प्रभाव में नहीं रहते, अपने से बड़ों के प्रभाव में रहते, वो बहुत अच्छे वो मुरली सुनाते हैं, बड़े अच्छे लगते, बहुत अच्छे, इतना बढ़िया ज्ञान सुनाते, बात मत पूछो, या शिव बाबा वही है, शिव बाबा ज्ञान सुनाते ना, हमें शिव बाबा के प्रभाव में आना है कि उस व्यक्ति के प्रभाव में आना है, और टकराव, ये चार बातें जिसके मन में है उसका कभी भी एक्यूरेट योग नहीं लग सकता, यही अपवित्रता है। स्थूल तो हमने छोड़ दिया, काम विकार बहुत सालों से छोड़ दिया, जब से बाबा के बने काम विकार छूट गया, किंतु आज जो अपवित्रता है वो इस बात की है, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव, जो मेरे हिसाब से नहीं काम करता उससे टकराव हो गया, वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए, उसको मैं अवॉइड करता हूं, किनारे पे रहता हूं, उसके वो मेरे सामने नहीं आया मैं उसके सामने नहीं जाऊं, ये भी अपवित्रता है, राइट। तो ये जो है लगाव, झुकाव, टकराव, प्रभाव, चारों से बचना, ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, ये पवित्रता है ब्राह्मणों की, और इसके से शांति आती, शांति माना शुद्ध विचार, पॉजिटिव विचार, जब शांति आ गई तो उससे रूहानी प्यार पैदा होता है, रूहानी प्यार माना अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन, कोई कैसा भी है, किसने जो मर्जी किया है, उसके प्रति मैं रेस्पेक्टफुल रहूं और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करूं, उसकी देखभाल करूं। आज दुनिया में कैसा प्यार है, कंडीशनल प्यार है, उसने मेरे को ये किया मैं भी उसको ये दे देता हूं, उसने मेरे बर्थडे पे 500 रुपए गिफ्ट दी मैं उसको 600 रुपए गिफ्ट दे देता हूं, उसने मेरे लिए किया मैं भी ये कर दूं, है ना, उसने नहीं किया उसको छोड़ दो, ये कंडीशनल प्यार है, राइट। इससे हम बीमार होते हैं, इससे हमें डिप्रेशन होता है, इससे हमें दुख होता है, स्वार्थ का प्यार है, परमात्मा का प्यार हमारे लिए अनकंडीशनल है, रेस्पेक्टफुल है, आदर के साथ है, हमें ऐसा प्यार दूसरों को देना है, दूसरे कंडीशनल प्यार से हमारे हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, और अनकंडीशनल, ऐसा अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन जिस सबको देते हैं तो उससे हमारे हार्ट की ब्लॉकेज खुलती है, इससे हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, मतलब अतीन्द्रिय माना इंद्रियों से ऊपर के सुख की अनुभूति होती है, अर्थात हमें हमारा जो सुख है, हमारी अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या है, कौन कौन सुख है, इंद्रियों का सुख कौन कौन, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, सूंघने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, छूने का सुख, ये हमारे इंद्रियों के सुख है, और सुख माना इन इंद्रियों से ऊपर का सुख, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, परमात्मा की संतान हूं, इंद्रियों के सुख के ऊपर चले गए तो ये है रियल सुख, जो जो देह के सुख है, इंद्रियों के सुख, उनसे हमें एडिक्शन पैदा होता है, उससे बीमारियां पैदा होती हैं, जो हम देखना चाहते हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने फेमस अपना जो कोई स्टार है, फिल्म स्टार, उसकी बस फिल्म देखना अच्छा लगता है, उसको देखना अच्छा लगता है, उसको देखे जा रहे हैं पागल होके, इससे बीमारी पैदा होती है, हमारा जो कुछ किसे गीत हमको मोहम्मद रफी बहुत अच्छे सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, इससे बीमारी पैदा होती है, कोई हमारी महिमा कथा सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, कोई नॉवल है, कोई किताब है, उसको पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कुछ चीज खा रहे हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है, खाए जा रहे हैं, ये जो है ना सुख, ये बीमारी पैदा करता है, ये जो हमारा जो ना सुपर सेंसुअस अतिंद्रिय सुख, इससे हमारी हीलिंग होती है, फिर आनंद, आनंद क्या है, आनंद, आनंद माना आन माना बंधन, कोई बंधन ना रहे, सब देह के बंधनों से पार, मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में खो गई, मैं आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो गई, ये आनंद है, और इस आनंद को जो अनुभव करने के लिए फिर सर्वशक्तियां चाहिए, सर्वशक्तियां क्या, जब एक बार सुख को और आनंद को अनुभव कर लिया, ऐसे रूहानी प्यार को अनुभव कर लिया, तो मेरे अंदर प्रगने की शक्ति आ गई, तो ये जो छह गुण है ना, ये छह गुण आत्मा से निकल रहे हैं, यही दिल है आत्मा की, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, आत्मा एक बिंदु है, उससे सात एनर्जी निकल रही है, और जो छह पहले गुण ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसको दिल कहते हैं आत्मा का। ये दिल है, और दिल की जो इस दिल से जो शक्ति पैदा होती है, परखने की शक्ति पैदा होती है, उसको हम विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं, परखना ठीक क्या है गलत क्या है। जब मैंने एक बार ज्ञान को अनुभव कर लिया, शुद्धि को, पवित्रता को अनुभव कर लिया, शांति, प्यार, खुशी, आनंद को अनुभव कर लिया, तो अब मुझे समझ आ गई कि ठीक क्या है गलत क्या है, परख लिया, राइट। तो अगर आत्मा में छह चीज भरपूर है तो मुझे परखने की शक्ति आ गई, मतलब विवेक मेरा दिव्य ईश्वरीय बन गया। अब बुद्धि मेरी दिव्य बन गई, मतलब मुझे एक सेकंड में निर्णय कर सकता हूं, मुझे ये करना है, मुझे यही करना है, मुझे मुरली सुनने जाना है, भले घर वाले मना करें, कैसे भी मुझे सब्जी लेने जाऊं, सब्जी के बहाने जाऊं, किसी भी बहाने जाऊं, मुझे मुरली सुनने जाना है, स्पोर्ट्स क्लब के बहाने जाऊं, शॉर्ट्स पहन के जाऊं, कैसे भी जाऊं, पर मुझे मुरली सुनने जरूर जाना है, राइट। मुझे अमृत वेला करना ही है, कुछ भी हो जाए, घर वाले लाख मना करें, मुझे उठने ही मुरली अमृत वेला करना है, सोने के पहले मुझे चार्ट भरना ही है, बाबा को चिट्ठी लिखनी है। तो ये जब अंदर लगन आ गई ना, ये निर्णय कर लिया हमने, ये दिव्य बुद्धि हो गई, और इससे इसके बाहर हमारा चित्त होता है, चित्त है ना, जो बाकी छह शक्तियां हैं, विस्तार को साथ मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना, समाना, सहयोग, ये हमारा चित्त है। ये जो चित्त है, अगर मैंने ठीक परख लिया, निर्णय ठीक कर लिया, तो मेरा चित्त शांत और एकाग्र हो गया, आनंदमय हो गया। अगर मैंने ठीक परखा नहीं, निर्णय गलत कर दिया, तो मेरा सार की बातें विस्तार में चली गई। आपको समझ में आ रही है, ये बात नहीं समझ में आ रही है, छोटी सी बात राई पहाड़ बन गई, समेटने की बजाय फैला दी सब जगह बात, स्नेह की सहनी की, अभी उसे सहन नहीं होता है, इतना सा किसी ने कुछ एक सुनाया, मैं दस सुनाया उसको, सामना करने की शक्ति खत्म हो गई, समाने की शक्ति खत्म, सहयोग करने की शक्ति खत्म हो गई, चित्त विस्तार में चला गया, चंचल हो गया चित्त। ये स्थूल चीज नहीं है, ना दिल स्थूल है, ना विवेक स्थूल है, ना बुद्धि स्थूल है, ना चित्त स्थूल है, सबकॉन्शियस माइंड, राइट। तो जितना हम इस एबीसीडी का अभ्यास करते जाएंगे, बाबा की मुरली को हम बार बार रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 50 बार, मेरा तो जीवन का लक्ष्य, मेरा जीवन का यही, मैंने जो भी सीखा है वो मुरली से सीखा है। मुरली एक बार सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं, 4:45 अमृत वेला करते ही पढ़ते हैं 4:45 बजे, और फिर मुरली सुनते हैं, लिखते भी हैं साथ साथ, और फिर उसके बाद वॉकिंग करते समय मुरली रिवाइज करते हैं, एक पार्ट, एक एक पॉइंट का मनन चिंतन मंथन करते हैं, और फिर सारा दिन जेब में ही मुरली रहती है, और जैसे ही हमें मौका मिला, कार में बैठे, हॉस्पिटल जा रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, बीच में गैप मिला, जेब से मुरली निकाली, देखा, एक पॉइंट पढ़ा, है ना, और उसको फिर देखा, उस पर मनन चिंतन मंथन किया, बाबा ने क्या कहा, रिवाइज, मनन माना रिवाइज करना, चिंतन माना वो चिंता लगाना कि बाबा ने तो ये कहा तुम ऐसे बनो, मैं तो नहीं बना, मुझे कैसे बनूं मैं, ये मंथन, उसके लिए विधि निकालो ढूंढ के, और फिर सिमरण, जो मक्खन निकला मंथन करने से उसको प्रैक्टिकल काम में लगाओ, सिमरण। तो ऐसे दिन में, ये बाबा का लव लेटर है एक्चुअली, है ना, हम आत्माओं के लिए क्या है, ये बाबा का क्या है, लव लेटर है ना, प्रेम पत्र। तो प्रेम पत्र कहां रखते हैं, कहां रखते हैं, दिल के पास, है ना, और प्रेम पत्र किसी को दिखा के नहीं पढ़ते हैं, चुपचाप निकालते हैं, जैसे मौका मिलता है ना, निकाला चुपचाप, यूं देखा, मुस्कुराया, एक लाइन देखी, जैसे देखा आसपास कोई नहीं है, निकालते, तभी निकालते हैं और फिर छुपा लेते हैं, है ना, नहीं। तो प्रेम पत्र कितनी बार पढ़ना चाहिए, कितनी बार प्रेम पत्र पढ़ना चाहिए, कम से कम, कम से कम 50 बार तो पढ़ना चाहिए, नहीं, चलो पूरा प्रेम पत्र नहीं पढ़ो, एक लाइन तो पढ़ो ना, नहीं, एक बार एक लाइन तो, दो लाइन तो पढ़ो, तीन लाइन तो पढ़ो, वरदान तो पढ़ो, स्लोगन तो पढ़ो, है ना, कि मेरे बाबा ने, मेरे प्रेमी ने, मेरे आशिक ने, मेरे माशूक ने, नॉट प्रेमी, आशिक, मेरे माशूक ने मेरे लिए क्या लिखा है, उसको गहराई से अनुभव करो बार 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 बार, है ना। तो ये जितना इस एबीसीडी को उतना मन बुद्धि शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, उतनी गहरी शांति आती जाएगी। उतनी गहरी शांति आएगी तो उतना अधिक गहरा रूहानी प्यार सबके लिए पैदा होता जाएगा, उतना अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होने लगेगी, उतना आनंद की अनुभूति होने लगेगी, उतना मेरा विवेक कैसा होता जाएगा, ईश्वर जैसा बनता जाएगा, भगवान जैसा बनता जाएगा, उतनी मेरी बुद्धि दिव्य डिवाइन माना दिव्य दैवी गुणों पर आधारित होती जाएगी, उतना मेरा चित्त शांत होता जाएगा, एकाग्र आनंदमय होता जाएगा। चित्त जितना मेरा आनंदमय हो, मतलब जिसके दिल में सत्य है, जिसके दिल में सत्य है, दिल में सत्य क्या, एबीसीडी, जिस दिल में सत्य है उसके चित्त में भी सत्य है, उसके चित्त में आनंद है। इसलिए कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप, परमात्मा सदा सच्चित आनंद स्वरूप है, परमात्मा के दिल में सदा सत्य है, परमात्मा सागर है ज्ञान का, पवित्रता का, प्रेम का, सुख का, आनंद का, शक्तियों का। इसलिए उसका चित्त सदा आनंद स्वरूप है, आनंद से भरा हुआ है। मनुष्य जो होते हैं सत्युग त्रेता में सच्चित आनंद स्वरूप है, जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है तो उनका चित्त सदा आनंद स्वरूप, ऐसे देवताओं का चेहरा सदा आनंद वाला दिखाते हैं, एकाग्र बुद्धि दिखाते हैं, शांत दिखाते हैं। किंतु द्वापर युग में, त्रेता कलयुग में आत्मा क्या हो जाती है, सच्चित आनंद स्वरूप नहीं रहती है, क्योंकि दिल में सत्य आ जाता है, दिल में देहवान आ जाता है, तो देहवान आने से आत्मा चित्त हमारा चंचल हो जाता है, भटकने लगता है, राइट। तो ये जो दिल को, अपने चित्त को हमें शांत बनाना है, एकाग्र और आनंदमय बनाना है, तो ये मुरली को बार 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 रिवाइज करो और रियलाइज करो, मुरली का स्वरूप बन जाओ, मुरली का स्मृति स्वरूप बन जाए, तो हमारे अंदर ये यथार्थ याद माना एक्यूरेट याद माना, ये जो एबीसीडी है ये हमारे हर चलन में आ जाए। इस एबीसीडी को ही देखें हम, एबीसीडी को ही पढ़ें, एबीसीडी को ही सुने, एबीसीडी को ही मुख से बोलें, राइट। जो भी खाना हो एबीसीडी की याद में ही खाएं, हर कर्म एबीसीडी के साथ ही करें। तो अगर हम ये एबीसीडी सिंपल नर्सरी के बच्चे करते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ऐसे हम लोग क्या करें अपने मन मन में, ए फॉर आत्मा, बोलो सभी, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, मुश्किल है क्या, यही तो सारा ज्ञान योग है ना। तो इसको हम चलते फिरते उठते बैठते जितना हम रिवाइज करते जाएंगे, हमारा बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, मन शुद्ध, दिल हमारा सच्चा दिल होता है। सच्ची दिल क्या है, जिस दिल में एक बाप के सिवाय कोई ना हो। साफ दिल क्या है, जिस दिल में एक बाप की श्रीमत के सिवाय कुछ और ना हो, वो साफ दिल है। तो ऐसी दिल पर साहब राजी है, और साफ दिल है तो मुराद हासिल है। तो ये हमें प्रैक्टिकल अभ्यास करते 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 हमारी दिल साफ होती जाएगी, दिल में दिलाराम समाता जाएगा, और दिलाराम माना कौन, दिल को आराम देने वाला माना कौन, ज्ञान का सागर। मेरे दिल में कौन आ गया, ज्ञान का सागर आ गया, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। तो क्या होगा, जो भी गंदगी है मेरे दिल में, अभी क्या बस गया था द्वापर युग से, एक तो देह आ गई थी मेरे दिल में, मेरी कॉन्शियसनेस में देह आ गई थी, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया था, देह के संबंधों का भान आ गया था, देह के स्वभाव काम क्रोध लोभ अंदर घुस गए थे, और देह के पदार्थ अंदर घुस गए थे। देखो देह के पदार्थ क्या, थोड़ा सा मकान खराब हो गया, थोड़ा सा कार में किसने साइड मार दी, है ना, सारा टाइम दिल में यही बात, ये कार मेरी चोट, कार को लग गई, मेरी ये चीज खराब हो गई, मेरा कपड़ा यहां से थोड़ा फटा, गुंडा ये दाग लगा हुआ है ना, बार बार इसको छुपा के, ऐसे कहीं दाग होगा ना छोटा सा, उसको छुपा के चलेंगे, है ना। दिल में क्या है, आत्मा नहीं है, वो दाग है ना, कपड़ा है ना, नहीं ऐसा, ये कपड़ा नहीं दिल में रहना चाहिए, ये मेरा, ये तो कार कल मेरा, कल थी, कल नहीं थी, आज कल नहीं भी रहेगी, कल मैं नहीं रहूंगा तो कार तो यहीं खड़ी रहेगी, है ना। तो ये जो है अपने अंदर से बहुत गहराई से इनको निकालना है, और ये तब निकलेंगे जब अपने दिल में, एक तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाबा तब तक हमारे दिल में नहीं आता जब तक हम इनको निकालते नहीं है, चार चीजों को निकालते नहीं है, तो अपने साथ बात करके बार बार बात करके देहभान को निकालो, देह के संबंधों को निकालो। हमारे दिल में बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारी पत्नी बैठी है, पति बैठा है, मां बैठी है, बाप बैठा है ना, बैठा है कि नहीं बैठा है? अगर दिल में बाप बैठा है, मां बैठी है, पति बैठा है, पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे, तो अंदर बाप कैसे अंदर आएगा? बाप कहते कमरा खाली करो तो मैं आऊं ना, तो हम कमरा तो खाली करते नहीं है। बाबा को पसंद नहीं है कोई और अंदर बैठे दिल में ना, दिल इसको खाली करो तब बाबा का आह्वान करो, तब बाबा अंदर आएगा। बाबा कहता बच्चों के दिल में कौन? हमारे दिल में तो पहले ही ऑक्यूपाइड है, 8-10 जने तो पहले ही बैठे हैं, है ना, तो बाबा अंदर कैसे आए? आ ही नहीं सकता है। तो सच्ची दिल नहीं है, अगर हमने बाप उनको निकाला नहीं तो सच्ची दिल नहीं है, बाबा वैसे दिल में नहीं आ सकता है। तो चलते फिरते उठते पे सबको निकाल दो, सबका कान पकड़ पकड़ अंदर से निकालना, घर से मत निकालना, है ना, अपने दिल में से निकालना, अपने देश अपनी देह को, देह के भान को निकालो, देह के संबंधों को निकालो, है ना, बच्चों को, मां बाप को, अपनी पति पत्नी को घर में रखो, घर में संभालो, किंतु दिल में मत रखो, दिल में सिर्फ शिव बाबा को रखो। देखो मैं आप एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, एक नर्स एक बच्चे के, बच्चे का वार्ड है वहां पे 60 बच्चे एडमिट हैं, एक नर्स 60 बच्चों को दवाइयां देती है, बच्चे रोते हैं उन्हें प्यार भी करती है, दवाई नहीं लेते उनको कैसे भी करके प्यार से दवाई दे देती है, राइट, इंजेक्शन भी लगा देती है, और उसके उसके घर में उसका एक बच्चा है, और बच्चा उसका बीमार होता है, उसको एक को संभाल नहीं पाती, दो थप्पड़ लगाती है उसको, वार्ड में 60 बच्चों को केयर कर सकती है, घर में एक बच्चे को खुद रोने लगती है उसकी उसकी रोने में, दवाई देने में खुद रोना शुरू, क्यों? क्योंकि उस बच्चे को दिल में समाया हुआ है, इसलिए उसकी केयर करने में रोने लगती है, और 60 बच्चों को दिल में नहीं समाया उसकी अच्छी केयर कर सकती है। तो हमें भी नर्स के माफिक, डॉक्टर के माफिक अपने घर वालों की केयर करनी है। हम अच्छी केयर कर सकते हैं, अपने दिल में रख लेते हैं तो उनसे केयर नहीं कर पाते, उनके साथ हम उल्टी सीधी बातें करते हैं, डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, राइट, तो करके देखो आप, तब शिव बाबा अंदर आ जाएगा, तो आपका हर काम एक्यूरेट होने लगेगा, हर काम एक्यूरेट होगा, और उनको फील होगा सचमुच हमसे प्यार करते हैं, रूहानी प्यार उनको अनुभव होगा, आपको भी अनुभव होगा, और वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, और फिर आप डबल लाइट स्थिति से हम सब उनकी सेवा कर सकेंगे, चलते फिरते बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। और यहां पर एक वो क्या बोलते हैं इसमें, एक कैच है, कैच क्या है, जितना आपका चित्त शांत होता जाएगा, एकाग्र होता जाए आनंदमय होता जाएगा, उतना आप क्या देखेंगे, उतना आपकी जो मेमोरीज है ना, स्मृतियां आपकी सारी वेवलेंथ पे रिकॉर्ड है, अंदर आपकी फरिश्ता स्थिति भी रिकॉर्ड है आत्मा में, जब आप फरिश्ते, पिछले जन्म में फरिश्ते, पिछले कल्प में फरिश्ते बने थे वो भी रिकॉर्ड है, सत्यों के जन्म भी रिकॉर्ड है, त्रेता के जन्म भी रिकॉर्ड है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे आपके सारे विक्रम भी रिकॉर्ड है। आपके चित्त की क्या स्थिति है, आपके चित्त में कौन सी, आपका चित्त अगर एकाग्र है, शांत है, तो शांति वाली मेमोरीज जागृत हो जाएंगी। अगर आपका चित्त इतना हल्का हो गया है कि आप इतने हल्के, चित्त से इतने हल्के हो गए, फरिश्ते की मेमोरीज जागृत हो जाएंगी, तो चलते फिरते फरिश्ता फील करेंगे अपने आप को। अगर देवता की रिकॉर्डिंग जागृत हो जाएगी तो आप चलते फिरते अपने को देवता महसूस करेंगे। और आपको अगर गुस्से वाली रिकॉर्डिंग हो जागृत होगी तो अपने आप गुस्सा आने लगेगा, अपने आप काम विकास जागृत होने लगेगा, अपने आप लोभ आने लगेगा, मोह आने लगेगा। तो सारी मेहनत जो है वो अपने अंदर करनी है, अंतर्मुखी माना अंदर देखो, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और संसार रूपी नाटक का आदि मध्यंत क्या है, इसको गहराई से देखो, अपने अंदर देखने की आवश्यकता है, अंतर्मुखी होकर के बार बार अपने अंदर जाने की आवश्यकता है, और फिर उसका अभ्यास करते करते इतनी स्थिति आ जाएगी हमारे अंदर इतनी करंट आ जाएगी, ये पुरानी देह जो खटारा हो चुकी है, खटारा माना घुटने पहिए खराब हैं, है ना, ये पीछे उसकी वेसलाइन खराब हो गई है, कार्बोरेटर भी खराब हो गया है, नहीं ये यहां से जो पाइप भी खराब हो गए हैं, फेफड़े भी खराब हैं, दिमाग तो पहले ही खराब है ना, है ना, उसमें पता है कचना कचरा कितना कचरा भरा हुआ है। तो सारी ये गाड़ी खटारा गाड़ी है। ड्राइवर जो है, अगर ड्राइवर को ट्रेनिंग अच्छी मिल जाए तो ड्राइवर माना आत्मा, तो ये खटारा गाड़ी को भी ठीक चला लेता है, राइट। और अनाड़ी ड्राइवर क्या करता है, नई गाड़ी को भी पहले दिन क्या करे, खटारा बना देता है। तो हमारे देखो, हमारे जो बड़े बड़े जितने हैं दादियां हैं, अपने बड़े भाई बहन जितने भी हैं, वो अपनी उनकी गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। कोई 90 साल की, कोई 100 साल की, कोई दादी को देखा ना आपने, 100 साल के भी हैं, 90 साल के भी हैं, 80 साल के भी हैं, तो वो इतनी पुरानी गाड़ी को भी कैसे चलाते हैं। बाबा ने उनको उनको एक्सपर्ट ड्राइवर बना दिया। तो पुरानी गाड़ी होने के बाद भी, शरीर में बीमारियां होने के बाद भी, वो अपनी इस गाड़ी से सेवा कर पा रहे। तो ये जो गाड़ी है इसको चलाना है, अमूल्य गाड़ी है। इसके लिए अपना जितना बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की चार नियम जो मैंने बताए, अमृत वेला कभी मिस मत करो, समय पर 4 बजे पावरफुल अमृत वेला करो, मुरली कभी मिस मत करो, पहले मुरली सुनने के पहले खाना कुछ मत खाओ, सेंटर पे जाके मुरली सुनो, क्योंकि सेंटर पे वो प्रॉपर वातावरण है अंदर मुरली जाने का। इंटरनेट पे मुरली नहीं सुननी होती है, टीवी पे मुरली नहीं सुननी होती है। आपको नाश्ता करना हो तो एक इंटरनेट पे फोटो खींच लो, उसकी सामने एक प्लेट ले आओ खाने की, और खाना गया अंदर, पेट भर गया आपका, खाना खाने की क्या आवश्यकता है। तो प्रॉपर मुरली जाकर सेंटर पे बैठ के 1 घंटा बैठ के सुननी होती है, तब आपके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, राइट। तो मुरली प्रॉपर सुनने के बगैर खाना मत खाओ, ये अंदर दृढ़ निश्चय कर लो। और दिन में कम से कम मुरली हर 1 घंटे में 5 बार तो रिवाइज करो, एक एक लाइन, जैसी मौका लगे मुरली के एक पॉइंट मन में ऐसे निकाली और कागज पे लिख के रख लो, निकालो और पढ़ो, निकालो देखो, फिर अंदर चिंतन करो, मनन चिंतन करो। तो ये बार बार अभ्यास करो, और फिर ये सारा दिन अभ्यास करते रहो। और सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को, अपने जो भी गलतियां हो गई हम सुबह से लेकर रात तक, जो भी हमसे गलत काम, गलत देखा, गलत पढ़ा, गलत सुना, गलत बोला, गलत खाया, गलत कुछ हाथ पैर से किया, किसी के गलत सोचा, लिखो बाबा मुझसे गलती हुई, साइन करके बाबा को दो, फिर चार्ट भरो, फिर मुरली पढ़ो दोबारा सोने के पहले, 9:30 सो जाओ, है ना, और फिर मुरली पढ़ के पूरी, और फिर बाबा को 5 मिनट याद करके सो जाओ। ये चार नियम है ब्राह्मणों के, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन रखना, बाबा ने आज क्या कहा, और सोने के पहले लेटर, चार्ट, मुरली, और सोने के पहले 5 मिनट बाबा को याद करके बाबा की गोद में जाके सो जाओ। ये चार नियम है। और ये चार नियम कब हमारे जीवन में आएंगे, चार नियम हमारे जीवन में कब आएंगे, पक्के अनुभव कब होंगे, पहला पवित्रता, ये पहला परहेज है। जितनी अधिक पवित्रता हमारी होती जाएगी, मनसा वाचा कर्मणा सम्मन संपर्क स्वपन तक, कर्म में तो आ गई किंतु अभी बोल में भी पवित्र, बोल पवित्र होना चाहिए, हमारे मन में भी कोई गंदे संकल्प ना चले, किसी विकार के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के ना संकल्प चले, और स्वपन भी पवित्र हो जाए। और सबसे बड़ी पवित्रता आज हमारे ब्राह्मणों में क्या चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ब्राह्मणों के भी ऐसा करता है, ये टीचरों के भी ऐसे करते हैं, ये क्या क्यों कैसे, ये पवित्रता है, ये भी नहीं चाहिए, ड्रामा में है ये, और बाबा को पसंद है, बाबा का बनाया हुआ ड्रामा है, तो इसमें हम क्वेश्चन क्यों रेज करें, यह अपवित्रता छोड़ने की आवश्यकता है। जितनी इतनी पवित्रता बढ़ती जाएगी, उतना अच्छा हमारा अमृत वेला होगा, उतनी अच्छी मुरली हमारे अंदर जाएगी, उतना अधिक हम पावरफुल योग हमारा लगेगा, ठीक है। चारों नियम तब अच्छे निभाए जाएंगे। फिर शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बनाओ, और 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन हो। हमारा जो राजसिक भोजन नहीं हो, राजसिक भोजन कौन सा, पराठा, पकौड़ा, समोसा, फास्ट फूड जितने हैं, ये जितने भी हैं जो स्वाद को लगने वाले, बहुत स्वाद लगने वाले जो भोजन है, ये सारे तासिक फूड है, इससे आलस पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होता है। तामसिक, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, नॉन वेज, लहसन प्याज, अचार खाना, ये सब तामसिक भोजन उत्तेजना पैदा करने वाले, काम क्रोध लोभ मोह पैदा करने वाले, तो ये सब हमें छोड़ देने चाहिए, ठीक है, हैं जी। चाय भी उत्तेजना पैदा करती है ना, चाय कॉफी, तो इसकी बजाय हम शांत करने वाले भोजन, जैसे फल, सब्जियां, अंकुरित दलिया, रोटी, दूध, ये पी, और वो भी बाबा की याद में। तो ये हमारा परहेज है, जितना इस भोजन पर ध्यान करेंगे उतना हमारा योग अच्छा लगेगा। तीसरा सत्संग, एक बाबा और बाबा की मुरली, इसके अलावा कोई किताब पढ़ना और कुछ देखना बंद कर दो। तो ये सत्य का संग रखो सिर्फ, तो उतना जितना सत्य का संग करेंगे उतना हमारा योग अच्छा लगता जाएगा, अमृत वेला अच्छा होएगा। कई लोग कहते हैं हमारा योग लगता नहीं, क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम इतना सारी बातें पढ़ लेते हैं, देखते हैं, इसका भी संग करते हैं, उसका भी संग करते हैं, उसका भी संग करते हैं, वो कहता है वो भी करते हैं, वो कहता है वो भी करते हैं, ये सब गलत है, ये सत्संग नहीं है। और दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्ट रहना, सदा मुस्कुराते हुए रहना, निमित्त भाव रखना, आज्ञाकारी बनके रहो बाबा का, अपने बड़ों का वफादार रहो, ईमानदार फरमान बरदार बनके रहो। तो ये जो दैवी गुणों की धारणा करो, गुस्सा कभी मत करो, गुस्सा एक बार किया तीन दिन तक आपका योग नहीं लगेगा, मुरली समझ में नहीं आएगी, चिंता की 18 घंटा आपका तबीयत खराब हो जाएगी, उदास एक बार हो गए 5 दिन तक योग नहीं लगेगा, ऐसे इनका परहेज करो। तो ये चार नियम, चार मर्यादा पक्के रहो तो ये आपकी यथार्थ याद बन जाएगी, और उसके द्वारा फिर चलते फिरते अनुभव होता रहेगा मैं आत्मा हूं, शिव बाबा के साथ कंबाइन हूं। और सारे बोझ जब बाबा से कंबाइन होंगे तभी तो बोझ दे पाएंगे बाबा को, फिर सारे बोझ बाबा को देते जाएंगे, इससे हमारी चलते फिरते डबल लाइट स्थिति हो जाएगी और करंट आती जाएगी और हम लाइट हाउस माइट हाउस बनके सारे विश्व की हर आत्मा को सकाश देते जाएंगे। राइट, ओम शांति।
जब विश्व शांति की बात चली तो शांति।